देखना के क्यों आता है, जल्दी आओ। ये हमारे गुरु खास करने के बहुत प्राचीन शिष्य हैं,
महापुरुष थे, भक्त थे, ये तो घटनाएं घटती रहती है जीवन में,
कितनी बार हमने मानव जीवन में अपने पूर्ण समर्पण भाव से गुरु निष्ठा गुरु सेवा की एक हमारे लिए आदर्श प्रकट किया, हमने सभी ने श्रवण किया कि गोसाई इत्यादियों में दुर्घटनाएं बनाने के लिए और योजना बनाई थी, बड़ा तालाब में नवदीप में नगर संगठन निकल रहा था कि प्रभुपाल जी के कितने सारे शिष्य हैं, हम लोग गोसाई हमारा एक भी कोई शिष्य नहीं है, क्या बात है, चिता गंगे को मारना होगा, न रहेगा बांध नगर की मौसुरी, प्रभुपाल जी रहेंगे तो फिर कोई शिष्य नहीं आएंगे, ऐसा किया गया छत पर पत्थर गर्म पानी बोतल रखनी नहीं और उन्होंने आक्षा करने की योजना बना ली। बिल्कुल महापात्मा ने ही अतिथि पर ध्यान ले करके और गोपाल जी की जो सेवा की वह सब उनका एक आदर्श गुरु सेवक की सेवा है, हमें उनके जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि गुरु जी की सेवा यदि करनी है तो इसी प्रकार से करनी है जैसे मेरी गुरु पाप बदल करके दिखाई थी। उन्होंने चिंता नहीं की अपने वस्त्र सफेद उनको पहना दिए गए गोपाल जी को और उनके सन्यासी वस्त्र पहन करके मरूंगा तो मैं मरूंगा और उनको माया को भेज दिया गया। बाल्यावस्था में उन्होंने अपने गांव में भी नेतृत्व ही दिया, लीडरशिप, छात्र जीवन में मोहल्ले पड़ोस में वो बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। एक दिन की बात है कि उनका स्वभाव था कि गांव में गरीब दीन दुखी असहाय तो की सेवा करना उनका स्वभाव था। वह एक बीमार व्यक्ति को दवा दिलाने के लिए कभी ले गए थे, शिक्षा कराने के लिए बड़े विलंब से घर पर आए, आकर के माँ ने बहुत डांटा उनको और डांटा तुम कहाँ गए थे, उत्तर दिया माँ ये बीमार था उसकी चिकित्सा के लिए बेचारा का कैसे विलंब हो गया। वह हाथ हथ के लिए जो पैसे मिलते थे उन पैसों से शिक्षा कराई, यह सुनकर के मां के आंखों में आंसू आ गए और उनको हृदय से लगा दिया। इसी प्रकार से एक घटना और विचित्र है जो कार्य चेतन महात्मा होने सर गोस्वामी के द्वारा करवाए गए थे, वह कार्य आपने भी किए। एक छोटी घटना में बता रहा हूं कि मायापुर में आपने जीर्णोद्धार किया, इस प्रकार से रूप गोस्वामी नंद गोस्वामी आदि ने कार्य किया था, वह कार्य करके वह कार्य अपना संपादन किया, क्योंकि उनको पता था कि यह भूमि महाप्रभु की जन्मभूमि है, यहाँ पर मुसलमानों ने कपड़े कर रखा है, कपड़े उन्होंने बना रखी है, बड़े बुद्धिमान थे, इतने तीव्र बुद्धिमान थे, उन्होंने योजना बनाई अपने आप ही, रात ही रात में सारी कपड़ों को खोद करके सारे जो उसे मृत शरीर थे उनको गंगा में बाहर दिया गया और वहां पर तुरंत नाना प्रकार के तुलसी के पौधे वृक्ष चित्र लगा दिए गए। रात ही रात में उन्होंने मुसलमानों ने रिपोर्ट की, थाना आया, उन्होंने पूछा पर उस दूसरी पार्टी से भाई तुम्हारा क्या प्रमाण है, ये जमीन तुम्हारी है, ये हमारे कपड़े हैं यहाँ पर खोल के देख लीजिए, बोला गया तो वहां तो एक भी कपड़े नहीं थी, कोई था ही नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने वह भूमि जो अधिगत कर रखी थी उन्होंने उस भूमि को उद्धार किया, जहां पर आज हम दर्शन करने जाते हैं जगत महाप्रभु की जन्म स्थली है। इस प्रकार से और भी एक ऐसी घटना मैं बता रहा हूं आपको कि जिसमें आपने प्रभुपाद जी ने एक बार प्रदर्शनी के माध्यम से यह बता रहे थे कि गुरु अपने शिष्य के लिए मछली बनाना के लिए जा रहा है, ऐसी जो असंप्रदाय थी, ऐसा जो वातावरण था वहां बंगाल का, उसको उन्होंने गर्व करके विरोध किया और कहा कि ऐसे गुरु जो संसार में है वह कभी जनता कल्याण नहीं कर सकते, हमारे गुरु महात्मा इस जगत में पधारे उसके न केवल उनके आगमन से उनका गांव, उनका देश या उनका शहर भी प्रफुल्लित हुआ। सारा विश्व आज प्रफुल्लित है उनकी कृपा से, उनकी शक्ति के संचार से। हमारी पूज्य पाठ महाराज श्री सारे संसार में एक बार नहीं कच्छों वहां जाकर के, और हम जैसे जो अधम व्यक्ति हैं उनका उद्धार कर रहे हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा प्यार करते थे उनको, प्रभुपाद जी गुरु जी को, और जिससे अधिक आत्मीयता होती है उसी से यह व्यक्ति टूट करके बोलता है। वो कार जहाज कहते थे प्रभुपाद जी उनको, बड़े सीनियर थे, काफी बड़े विचार थे, उच्ची कोटि के विचार थे उनके। सब समय जो है अध्ययन करते थे, बड़े बड़े सन्यासी बंदों को प्रणाम करते थे, तो मेरे ध्यान में मोहन के ग्रंथों में लीन रहते थे। एक बार प्रभुपाद जी से कहा अन्य शिष्यों ने दिया, हम रोज दादा को प्रणाम करते हैं, वह तो कुछ देखते ही नहीं, हम कर देते हैं, सुनोगे नहीं सुनोगे उनको। ऐसे ऐसे सचमुच में जैसे महाराज बता रहे थे कि हमारे गुरु जी का संन्यास तो उसी दिन प्रभुपाद जी के द्वारा हो चुका था जिस दिन उन्होंने अपने वस्त्रों को पहनाए थे और उनका वस्त्र पहन लिया था। कई बार एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार उनके संन्यास का आवेदन किया गया, किंतु नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की। मठ के लोगों ने कहा कि हमारा संन्यास ले लिया तो ये एक अच्छे कुशल प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं, मठ नहीं चल पाएगा। कौन काम करेगा कचहरी कोर्टों में जाकर के, कौन संभालेगा सारा रेवेन्यू भरे इकट्ठा करते थे। बहुत सुंदर एकदम फर्स्ट क्लास वाइट ड्रेस पहनते थे, और उनके पास रेवेन्यू उभारने के लिए एक घोड़ा दिया हुआ था उनको, बहुत शानदार करते थे। इस प्रकार का आपका एक जीवन था। आप बहुत बड़े लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, लेखक के रूप में हम उन्होंने मायावती जीवनी ग्रंथ लिखा, जितने भी मायावती थे और सहजिया थे बड़े प्रशब्द बोलते थे, उसमें सारा कुछ जो था उनका उनके जीवन में मैं बता रहा था कि वो इतना सत्य बोलते थे कि व्यक्ति को जब हरी भरा लग जाए। उन्होंने अपने खास सहोदर भाई को भी कपिलता कर दिया, पूज्यपाद भक्ति जी और उन्होंने महाराज जी को महात्मा जी को है प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के विरुद्ध चला करते थे। संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने सभी वस्त्र पहन लिए गए थे और सारे शिष्यों को बोल दिया था कि कोई व्यक्ति बाबा जी गवर्नमेंट में जाएगा तो वह उसको सबक से स्नान करना पड़ेगा, तीन दिन का उपवास करना पड़ेगा, ऐसा कठोर नियम था। बड़े चिंघाड़ते थे, सहाड़ते थे चेहरे की तरह से कि तुमने ऐसी गलती क्यों की है, और उदार और सरस बहुत अधिक थे, इतना प्यार करते थे जैसे एक सिंह अपने बच्चे पर प्यार करता है, छोटे से शिशु पर जिनको आनंद मर्जीनर सन्यासी बंद उनको डांट करके कभी कभी गुस्से में बाहर निकाल दिया करते थे। उनमें से मेरी छोटी बहुत गुरुभाई है शरण कुमार जहाँ आए हुए हैं यहाँ वृंदावन में, तो उनको मैंने देखा आंखों से कुछ बार जो हमारा गाँव खड़ा था उनको बाहर निकाल दिया हर रात्रि को, मेरा खाना चले गुरुभा जी के अपने साथ सब हो गए हैं, बड़े प्यार से उनको दुलाते हुए अंदर लेके आए, कहते गए बाजार में उनको खाना खिला के खिलाया। इस प्रकार से गुरु महाराज जी का पाद पद्म का यह चरित्र है। आप बड़े कभी भी रहे, आपने रोज रहे इस पर लिखा, जैसा आपने सुना महाराज जी से उन्होंने मंगला आरती लिखी, मंगल आरती तुलसी आरती आज भी सारे मठों में वह किसी भी महाराज के मठों में गाई जाती है, केवल अंतिम लाइन डाल दी गई है उसमें उन्होंने कोई नाम अपना डाल दिया है, अदरवाइज उनको तो खुशी है, हम लोगों को सबको हमारे महाराज जी को खुशी है, कम से कम हमारे गुरु जी के द्वारा हमारे आरती में कभी गाई जाती है। आप एक बार आसाम गए, वहां आपने एमएलए के रहकर आप मुझे और एमएलए ने प्रश्न किया कि यहां पर भारतीय समाज कौन सेवा करता है, हमारे यहां पर सबको गरीबों को भाष्य बांटता है, धन बांटता है, भोजन बांटता है, आप क्या करते हैं। महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि मैं यहां कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं यहां लोगों को कुछ देने के लिए आया हूं, जो है विचार देने के लिए आया हूं जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। हरिजन के अतिरिक्त जीव का कल्याण कदापि संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है हरिभजन के बिना। जो हरिभजन नहीं करते हैं वो बड़े सबसे बड़े दरिद्र हैं, बड़े निकृष्ट हैं, चाहे वह कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। इस प्रकार से उन्होंने बताया, आप जो है प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं केवल पूछा था कि आपके कितने सारे शिष्य हैं, प्रभुपाद ने कहा मैंने कोई शिष्य नहीं है, मैं तो सबको गुरु मानता हूं। सब सोच रहे हैं प्रभुपाद जी की वाणी सार्थक सिद्ध हुई, उन्होंने उनके जितने भी शिष्य थे बड़ी खुशी होती है मुझे ये देख करके कि जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद जी के सारे गुरु बने। सच्चा गुरु पद होता है जो शिष्यों को गुरु बना देता है। आज हमारे महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित होकर के सारे देश के लोगों को उसी धारा पर लाने की चेष्टा कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रशासक आपने बनाए हैं, कर रहे हैं, आगे और बनेंगे। वे सबके सब बड़े सुंदर रूप से प्रचार कर रहे हैं। संगीत हो चुका है और कुछ बोलने बोलना बाकी था। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।
बीच में मैं कुछ बता रहा हूं कि आज ऋषि छत पर श्री रामों का रक्षण रायण मंच संवाद भक्ति रिंदु मित्र चैतन्य शिक्षा में और मानपुर के तारबंदी में ये सब हिंदी में प्रकाशित हो सकते हैं। अंग्रेजी में संतान चंद्रिका और रोहित में बीस जो आउट ऑफ प्रिंट अंग्रेजी में थी और भी चमत्कार चंद्रिका भी ये छप चुकी है और भी 20 पुस्तकें जो अंग्रेजी में आउट ऑफ प्रिंट थी वो बहुत जल्दी से छप करके आ रही है जिसको भाषा रूप चाह रहे हैं। ये जो दामोदर अष्टकम है रामानंद संवाद ये इसके लिए पहली सविता कहां है जरा खड़ी हो जाओ खड़ी हो। इसने हमारे प्रवचनों को एकत्रित किया और एकत्रित करके हमारी व्याख्याएं और सब जो चीजें फिर करके संग्रह करके इसने तैयार किया दामोदर अष्टकम रामानंद संवाद हमारे किसान पुस्तकों को इसने पहले एक सफल सूरत दिया और तब फिर उसको मैंने कुछ संस्करण में परिवर्तन करके इसका संपादन। तो ये पुस्तकें आप उपलब्ध हैं। इसके लिए हमारे माधव प्रिय और कृष्ण पिता को बहुत धन्यवाद है दिन रात जग कर और शांति देवी और अमर कृष्णा कारुण्य और हमारी श्याम रानी और उसके सहायक लड़कियां सुबह तथा ये सब लोगों ने बहुत परिश्रम करके इन पुस्तकों को मधुमंगल और सब कितना नाम गिनाए हैं, ये सब लोगों ने भगवान की सेवा की है और ग्रंथ प्रकाशन में हमारी तरह तरह से सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान से इन लोगों के लिए कृपा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विजय विजय इन पुस्तकों को आप लोग संग्रह कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट फ्रॉम बुक स्टॉल देयर।
He was not a person of this world. He is the eternally liberated personality who has come down into this world to assist the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he is an eternal associate of his Gurudev, Nityalila Pravishta, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So his life was an example to all devotees how to serve Guru, how to be a real Guru Seva, how to sacrifice one's very life and soul for the service of Guru. If one reads his biography and hears about his life, one can easily see that in his life he had nothing else except the service of his Gurudev and pure bhakti, pure devotion to Bhagavan. His life began taking birth in a Gauramandala Bhumi, and he was born into a very aristocratic family. And from his early childhood, he had the opportunity to attend so many devotional gatherings, recitations of Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, and all. And he imbibed from his early life the attraction to the pathway of pure devotion, Shuddha Bhakti. Even in his astrology charts, it showed the symptoms of a Siddha Mahapurusha, a perfect personality in this world, who in the future would do great, powerful service for the spreading of the mission of pure devotion in this world, and through whom all the mercy of the pure Vaishnavas would be flowing to rescue and save all the jivas within this world. So just as in his pranam mantra, it is said, Svati Svasritanam Chapalane Jiva Durke Sadarthaya. He came in this world to deliver the jiva souls, to deliver them from all their unlimited sufferings, repeated birth and death, and Srinama Prema Prajayane, to give them Prem Nam, which Sri Chaitanya Mahaprabhu brought to this world. So this divine personality, from his early boyhood, came into the association of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. His aunties, he had two aunties who were the very, very early disciples of Srila Prabhupada. And once the first meeting that he had with his Gurudev was in Gaurapurnima in 1915. And he came there for the celebration of the annual Gaurapurnima festival in Mayapur, in Yogapeeth, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. And that festival went on with very wonderful programs of Harikatha and Kirtan. And toward the end of the festival, Srila Prabhupada was sitting with his few devotees. He had not really begun his extensive preaching. It was only in the beginning stages of his Gaudiya Math preaching. And he was sitting, and he was telling to them that in the future, I want that we will establish temples all throughout the nine islands of Navadvipa and throughout all the major cities in India. And we will print transcendental literatures in all languages. And in this way, we will spread the mission of Chaitanya Mahaprabhu. So at that time, one of these aunties, his name at that time was Vinod Bihari Brahmachari, and she said to Prabhupada, "Oh, Srila Prabhupada, at the present time, you have barely enough devotees to even ring the bells during the Aarti ceremony, but yet you have such grand vision that so much work will be done for spreading the mission of Mahaprabhu. So how will it be possible that this will take place? Because we cannot see at the present time that you have anyone to help this happen." And then at that time, Srila Prabhupada, gestured, he said, "Vinod will do all things." So from that moment, he recognized his eternal associate, that he had come to assist him in this mission of Chaitanya Mahaprabhu's Harinam Sankirtan movement. So from the very beginning, when Devotee Hari had left his school life, being finally disinterested in the pursuit of mundane knowledge, and now he chose to dedicate his life to his Guru Maharaj. From his very early life, he was completely absorbed in serving his Gurudev and living very simple in mod life as a brahmachari, taking only very simple prasad. Even one day there was practically not any vegetables to eat and only a little bit of rice. But the brahmacharis who were there in the mat, they took some neem leaves from the neem trees and some other leaves for making some very simple vegetable, and they cooked rice and offered bhog to Thakurji, and they were sitting and honoring this rice prasad. And when Srila Prabhupada came and walked by near to them, he saw that they were not really getting sufficient prasad. And then Vinod looked at Prabhupada and told him, "O Guru Maharaj, we are observing Vaivagya. We are doing austerity." And he never complained at any time in his life. He never complained whether there was too much salt, too little salt, or the taste of the Mahaprasad. Always he was completely accepting whatever Krishna said. And as he began to manifest his unparalleled service to his Guru Maharaj, he began to take charge of all of the management of the affairs of the Chaitanya Math and there in Mayapur Dham and the branch Maths. He became one of the topmost managers of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, so much so that even when Srila Prabhupada suggested that he should take sannyas, some of the other god brothers told, "Oh Prabhupada, if you give him sannyas, then everything will fall apart. He is managing everything. How will things go on?" More than one time, Srila Prabhupada wanted to give him sannyas, and they told like this. So everything was resting upon his powerful seva to his Guru Maharaj, and he was so expert in that seva. Srila Prabhupada gave him the title Kriti Ratna. Kriti Ratna means the jewel of performers of great activities. He was like a jewel in performing Guru Seva. There are so many examples. This morning we also heard from Srila Gurudev about how he actually sacrificed his life to save the life of his Guru Maharaj. This is one of the most famous incidences in his life. How he exchanged his clothing with Srila Prabhupada when they were attacked in Navadvip Dham. And Srila Prabhupada gave him his sannyas desh, and he directed Srila Prabhupada to be taken to safety in Mayapur Dham, completely sacrificing his own life, no consideration for himself. There is a very wonderful memory which Srila Gurudev describes in the biography of Param Gurudev, where he
went to see Tehanti Darshan of Srila Bhakti Rakshak Srikant Goswami Maharaj. And at that time he told
about
his first meeting
when he first met Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj. And it was during the Gaur Utsava festival, Gaur Purnima, in Chaitanya Math. And Srila Sridhar Maharaj had come there for the first time to attend such a festival with the Gaudiya Math Vaishnavas. And when he came into this area, there was so much preaching and activities going on in every direction. And then he noticed one person who was sitting underneath a jackfruit tree. To this day, when we go to Navadvip Dham, we go to that same jackfruit tree, which is still there. And under this tree, Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj, who was Vinod Bihari Brahmachari at the time, wearing white cloth, because he was performing all management duties in the mat. He was sitting on a chair, and there was a table in front of him, and he had his legs, his feet, up on the table. So Srila Sridhar Maharaj was describing how he was sitting there with closed eyes, relaxing with his feet up on the table, moving his feet back and forth. But the most unusual thing was that there were so many brahmacharis, and sannyasis even, and so many persons coming before him and standing very patiently with folded palms, very respectfully, paying dandavat pranams to him while he sat on his chair. And then they would ask him some question, and he would open his eyes, he would reply to them, and then very respectfully they would pay their pranams and they would go away. And Srila Sridhar Maharaj was astonished by this, because here was a white-clad, younger brahmachari, and all these senior personalities were offering such respect to him. So he inquired from one of the persons, who is this personality? They said, oh, this is Vinod Brahmachari. He is most intimate servant of Srila Prabhupada. All of the activities of the mat, they are going on by his direction. He is very important in all of the preaching mission of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So this was the first time Srila Sridhar Maharaj saw Sri Vinod Vihari Brahmachari. So all through his life, during the presence of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he performed so many important sevas, and very intimately had such a relationship with Srila Prabhupada that Srila Prabhupada used to call him. In Bengali, they have a number of different ways of calling to someone in the second person singular. Like in English, we only have one, you. But in Bengali, they have Apni, they have Tumi, and they also have Tui. So each one is progressively more and more intimate. So when he used to call Vinod Vihari, he used to call him only he. There are very few other disciples Srila Prabhupada called by this very affectionate way to eat, very intimate. So in this way, he went on performing all of his sevas under the direction of Srila Prabhupada, assisting all of his activities, also taking charge of the Bhaktivinoda Thakur College, university that was there. And right up to the very end of Srila Prabhupada's manifest pastimes, he assisted him. But then after the disappearance of Srila Prabhupada, then a very great cloud, it came over the sky of the Vaishnava world, Gaudiya Vaishnava world. And there was so much dissension amongst the disciples, and so many of them went back to their homes, brahmacharis went back to live in their homes, etc. But Sri Vinod Vihari Brahmachari, he continued on, and after a few years, he gathered together with some of his godbrothers, and although there were some legal issues, he separated from the institution because there was desire on the part of others to control legally the properties. So he simply came separately and he began his own preaching mission, Sri Gaudiya Vedanta Samiti. And from the very beginning, Sri Vinod Vihari Brahmachari, he began to reinstitute all of the activities that had died down. Everything had stopped when Prabhupada left this world. All of the preaching, all of the publication work, the printing presses had come to a stop. The parikramas had ended, everything. So Sri Vinod Vihari Brahmachari, at that time he took sannyas from Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. But actually, as Gurudev has told many times, that Srila Prabhupada himself came in his dreams and even gave him the sannyas name, Sri Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. So, as he began his extensive preaching activities, it was like a very great force. And he organized and mobilized the devotees again. And now he began traveling and preaching all throughout Bengal, Assam, and so many other parts of India. He reestablished all the parikramas, taking devotees to Gauramandala Parikrama, Brajamandala Parikrama, Puri Parikrama, and even going to South India, North India, Bhadrik Ashram, everywhere. And constantly spreading the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu everywhere. And he was powerful like a lion, therefore we say, Nama Om Vishnupataya Acharya Singh Rupane, because he preached powerfully like a lion, fearlessly, and he never tolerated any kind of apasampradayas, any kind of sahajiyas. He spoke boldly, never wavering, never having any timidity or fear that he should speak the truth, very powerfully. He was also ready to challenge anyone if they came forward and were challenging the precepts of Srila Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he, even his own brother, whose name was Odalami Maharaj, after Prabhupada's passing away, he was separated somewhat in his ideas about the teachings of Srila Prabhupada. And even though he was his own brother and his godbrother as well, Srila Bhakti Pragyan Keshavar completely separated himself and said, I don't want to see the face of anyone who is opposed to my Gurudev. When he would come for Gaur Mangala Parikrama to the Samadhi of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, when he would begin trying to speak about his Guru Maharaj, simply he could not even speak, and he would just begin weeping and sobbing and saying the name of Prabhupada, Prabhupada. In this way, his whole life and soul was Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati. So his whole life was an example for everyone how to completely surrender to the order of Guru, how to carry that order on one's head, and how to work tirelessly without any self-consideration of oneself for the mission of one's Gurudev. So on this glorious disappearance day, we have the opportunity to hear about his qualities and pastimes. Srila Gurudev has written a very beautiful biography describing all of his pastimes and his Siddhanta, very beautifully collected, his presentation of this Gaudiya Vaishnava Siddhanta and all of this tattva that has come down in the line of Chaitanya Mahaprabhu. So we are very fortunate, and I'm especially counting my good fortune that I have the opportunity in my life and to associate with a seva of the lotus feet of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, a pure devotee, a pure disciple who has given his life and soul also at the lotus feet of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And that is our beloved Gurudev, His Divine Grace Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Yes. And Srila Gurudev is reminding that most importantly, this connection, especially that so many of us here have, most of us in this room, we have come to the lotus feet of Srila Gurudev through our Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, who was the intimate bosom friend of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And he took sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, and in Mathura, in Keshavji Gaudiya Math, and our Gurudev was the head priest in that ceremony. He personally made his danda. He personally showed him how to wear sannyas vesh and intimately associated with our Prabhupada. So this family, this divine spiritual family connection that we all have through Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, through our Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, through our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, this is the most glorious transcendental family in this world today, and we are so fortunate to be here under their divine guidance. Yes, and the Gaudiya Vedanta Samiti that we are associated with, our Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj was co-founder of this Gaudiya Vedanta Samiti, and all the principles were completely followed by him and approved by him. So this is our family gathering that we have here from all over the world. We have come to take shelter of their divine lotus feet. Vancha kalpa dhruva shakti paasya dhruva.
Namayam Vishnupadaya आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद ब्रह्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत स्वामी महाराज व चरण कमल में अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद ब्रह्मा परिप्राज आचार्य त्रिदली स्वामी श्रीमद्भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित त्रिदली पादगण वैष्णव एवं वैष्णवी सभी को चरण मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता आचार्य नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का तिरुभाव महामहोत्सव है। जो तिरुभाव महामहोत्सव एक तरफ तो दुखी है लेकिन दूसरे तरफ में सुखी है। महाप्रभु प्रश्न करते हैं राय रामानंद को, राय बोलते कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, जगत में बहुत सारे दुख है लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? तो उसको उत्तर देते हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना ही देखी पर। जैसे भी जगत में बहुत सारे दुख है लेकिन दुख का जो परम दुख है जब किसी भक्तों से शुद्ध भक्तों से हम बिछड़ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब जीवन में सबसे जीवन में दुर्दीन अवस्था पहुंचे लेकिन उसी समय हमें वो दुर्दीन दुख अवस्था से हमें कौन मोचन कर सकता है? कि दुर्दीन दुख का विषय क्या है? जब हम भगवत भजन से दूर हट जाए लेकिन उसी समय हमें कौन उससे बचा सकता है? कहते एक शुद्ध भक्त उसका हरि कथा ही हमें वह दुर्दीन से बचा सकते हैं। इसलिए जितने सारे शास्त्र है साधु संग सर्वशास्त्र है लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्ध है। हमारा ये दुख है लेकिन दूसरे तरफ में भक्तों से जब गुरुदेव बिछोड़ते हैं लेकिन वहां पर एक विरह महोत्सव शब्द प्रदान करते हैं। महोत्सव दो तरह से हो सकता है, एक तो भक्त से गुरुदेव जब बिछोड़ते हैं एक तरह का विरह रस उपलब्ध होती है। अब विरह में उसी समय संपूर्ण रूप में मिलन होता है इसलिए उसका नाम विरह है। पी मतलब विशेष पूर्वक, प्र मतलब प्रतिष्ठ रूप में, विप्रलप मतलब मिलन है। जहाँ की संपूर्ण रूप में हमको विरह में एक एक उनको लीला को गुण को हम स्मरण करते हैं और दूसरे तरफ में यहाँ तो हम देखते हैं विरह है लेकिन उसी जगत में जिस समय एक राधा रानी के मंजरी इसी जगत में आकर के अनंत कोटि जीवों को भगवत भजन में लगा करके जब यहाँ पर विजयता को प्राप्त करके जब वो अपना नित्य धाम में पुनः प्रभु के नित्य सेवा में चले जाते हैं वहां पर श्री जुगल किशोर गोपियां मंजरिया उनको बड़े धूमधाम से उनको स्वागत करते हैं। अमो भाग्य है एक मंजरी खाकर के पृथ्वी में कृष्ण भक्ति की बाढ़ को द्वारा सारा जीवन प्लावित करके वहां पर विजय प्राप्त करके यहाँ पर श्री गोलोक वृंदावन में बधा रहे। वहां पर उनको विजय महोत्सव होता है, वहां पर प्रिया प्रियतम स्वयं उनको अपेक्षा में उनको गला में सुंदर माला को डाल करके वहां पर विजय उत्सव मना दें। इसलिए एक तरह का विरह महोत्सव है। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का जो दिव्य चरित्र है जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथानंद, उसी तरह भक्त भी अनंत है उनका भक्तों का चरित्र भी अलग है। अभी अभी सवेरे से आप लोग श्रवण कर रहे हो, उनको कितने दृष्टिकोण से, उनका हर हर क्रिया ही, उनका हर हर जीवन में कितने सारे शिक्षा के बात छुपा हुआ है। सवेरे से सुन रहे हैं, तभी हम लोग सुन रहे हैं, तभी उनको कथा को नए नए भक्त लोग नए नए दृष्टिकोण से उनको विचार वैशिष्ट को स्थापित करते हैं। इसलिए कभी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि जब ये प्रभुपाद को पास में आए, प्रभुपाद कहते मिलो, अभी तक तुम कहां था, देखो क्या उत्तर दे रहे, कहते गुरुदेव अभी तक तो आप मुझे स्मरण किया नहीं, जब मुझे स्मरण किया आपको सेवा में अभी मैं उपस्थित हो गया हूं। तो इससे आप लोग समझो, मतलब प्रभु जो शिष्य गुरु का संबंध है, जो संबंध है, और ये सचमुच से श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जैसे सपार सदस्य स्वभाव है, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब एक समय राधारानी हाँ श्री नयन मणि मंजरी को बोलते, नयन मणि मंजरी सारे जीव कृष्णा भक्ति से विमुख होकर के कहाँ कहाँ संसार में भटक रहे, जाओ तुम अपना अकेले मत जाओ, अपना परिकरों को साथ में जाओ, और परिकरों को साथ में जा करके पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु का मन अभीष्ट को स्थापन कर। इसलिए जिस समय भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद मायापुर में सतगुरु नाम जप कर रहे थे और सोच रहे थे मैं कैसे गुरुवर्ग का इच्छा को मैं कैसे पूर्ण करूं, भक्ति विनोद ठाकुर गौरकिशोर दास गौज महाराज जगन्नाथ दास गौज महाराज उन लोगों ने बहुत बहुत कुछ दायित्व दिया है, लेकिन उनको इच्छा को मैं तो अभी अकेला हूँ, उनको इच्छा को मैं कैसे पूरी करूँ। कहते उसी समय हुए अपना स्वप्न समाज में दर्शन करते हैं, कहते प्रभुपाद तुम चिंता मत करो, सारे गुरुवर्ग को महाप्रभु का दर्शन किया, ओ तुम सोच रहे हो अकेले हो, कहते कोई चिंता मत करो, तुम प्रारंभ करो प्रचार, तुम्हारा पीछे सबके सबसे बल पैसा को हम भेज रहे हैं। उस समय प्रभुपाद कहते हैं मेरे अंदर में सौ गुण उत्साह मेरे अंदर में आ गया है, इसलिए माना सचमुच से भक्ति हमारे प्रभुपाद का जितने सारे गण हैं इस सबके साथ महाप्रभु को द्वारा प्रेरित है, नहीं तो अगर प्रेरित नहीं होते तो इनका जीवन में जो हम देखते हैं हमारे भक्ति प्रज्ञान इनका जीवन में देखो अपना प्राण को हथेली पर लेकर के फिर प्राण विसर्जन कर सकते हैं, जहां पर संपूर्ण प्रभुपाद को मारने के लिए प्रयास किया जा रहा था, संपूर्ण मृत्यु इन्होंने संपूर्ण मृत्यु को सामने गए, तो कारण क्या है। यहाँ पर प्रभुपाद और एक तरफ में दिखा रहे हैं, जद्यपि मेरे बहुत शिष्य है लेकिन वास्तव रूप में शिष्य किसे कहते हैं, विपत्ति का समय जो आगे आए, लेकिन उसी समय केवल एक महापुरुष थे जो कि सबके सबके इधर भाग गए, लेकिन इन्होंने अपना प्राण को हथेली पर लेकर के मतलब मृत्यु को सामने दिखा रहे हैं, उनको मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने प्रभुपाद बेस लेकर के मृत्यु को सामने बांध गए, जिसके लिए देखो जगत में वो भी आए और उनका भी ऐसे शिष्य हुए हैं जो कि सारा विश्व ब्रह्मांड में भगवत भक्ति धर्मों को प्रचार करते हैं। इसलिए जगत ही हम कहते हैं छह गोस्वामी, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी रूप में हम कहते हैं, क्योंकि जो छह गोस्वामी को महाप्रभु ने जो जो निर्देश दिया है उन निर्देश को भक्ति विनोद ठाकुर ने पालन किया, लेकिन अगर हम हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को अगर सप्तम गोस्वामी हम कहते हैं समझो कोई अतिथि नहीं है, कोई ज्यादा बोलना नहीं है, यदि संपूर्ण रूप में महाप्रभु का जो निर्देश है श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापित जैन भूतले, इसलिए स्वयं रूप अचदानजम, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी उन्होंने महाप्रभु का सारे अभिष्ट को पूरा करते हैं। कहते कैसे है, कहते उनका पहला निर्देश है विग्रहों को स्थापन करना, कहते हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज विग्रह का स्थापन किया, लेकिन वह जो विग्रह को स्थापन किया समझो सारे गोस्वामी से कुछ विशेष बैठ एक सारे गोस्वामी से एक संपूर्ण अलग रूप में हम जो रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव कहते हैं इस संपूर्ण रूप में अपना जीवन में रूपानुगत तो का स्थापन किया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति में उन्होंने सफेद विग्रह का स्थापन किया, इसलिए कुछ लोग उनको कुछ गुरु भाई लोग बोले ओ इसलिए सफेद विग्रह स्थापन किया है कि सफेद विग्रह का कम पैसा में आता है, जो काला विग्रह अपना कष्ट लिए तो कम पैसा में आता है इसलिए तुमने सफेद विग्रह का स्थापन किया। कुछ कुछ गुरु भाइयों ने तुमने ऐसे बताया, लेकिन उन्होंने यह चीज को स्थापन करने के लिए वास्तव रूपानुगत तो किसे कहते हैं, रूपानुगत है क्या चीज, तब उन्होंने एक राधा विनोद बिहारी अष्टक संपुत रूप लिखे, तो अष्टक लेख करके जिसमें राधा चिंता निवेश जस कांति विलोचिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा लिंगित विग्रह, और यह वस्तु को उन्होंने उन्होंने जो स्थापन किया ये ऐसे नहीं मैंने साधा विग्रह स्थापन कर दिया, तो उन्होंने बलभाव पुराण और स्वप्न विलास अमृत से हमारे विश्वनाथ चतुर्थ स्वप्न विलास अमृत से उन्होंने उदाहरण देते हुए वो चीज को जो राधा विनोद बिहारी अष्टक उन्होंने जो प्रण किया, अगर जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कितने गंभीर उसमें विवेचना है, माने संपूर्ण रूप में महाप्रभु का जो धारा राय रामानंद संपाद का जो निष्कर्ष है और जितने सारे ग्रंथ का जो सार उन्होंने स्थापन किया, और उसी श्लोक के ऊपर में हमारे महाराज जी हाँ महाराज जो विवेचना दिया है जो लोग पढ़े हैं उनको पता है एक एक श्लोक का जो डीपली जो मिली है समझो महाराज ने संपूर्ण रूप में रस सागर को महाराज ने उनको जीवन जो ग्रंथ निकाल है संपूर्ण रस सागर को प्लावित कर दिया समझो वो ग्रंथ कर दें। अगर हम यह बताए श्री केशव मन अभिष्ट स्थापित जग बुदले स्वयं नारायण तदाजम तदापित नहीं है, क्योंकि एक शुद्ध भक्तों के हृदय में गुरु जी का जो भावना संपूर्ण रूप में परिपूर्ण है, इसलिए उन्होंने जो राधा जो सफेद विग्रह स्थापन किया भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में स्थापन करते हैं, कहते गुरुदेव कहते शुद्ध भक्त अपना हृदय में प्रेमांजन छुरी भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सुलोते कहते वो तो हर समय हृदय में दर्शन करते हैं पर विग्रह को स्थापन विग्रह क्या चाहिए, कैसे विग्रह अपना शुद्ध हृदय में प्रतिफलित होता है, हाँ जो दर्शन करते हैं वही चीज को ही सामने पकड़ते हैं उसको ही सामने प्रकटित करते हैं। मानो यहां पर मानो उन्होंने अपना हृदय में जो दर्शन किया क्या दर्शन किया राधा चिंता निवेश में जैसे का जो गौरी वैष्णव है जो रघुनाथ दास गोस्वामी उनका स्वभाव लहरी में लिखते हैं कहते जो गौरी वैष्णव है वो क्या है सिर्फ कृष्ण पक्ष नहीं है वो राधा पक्ष है, हाँ राधा रानी का दुख में दुखी और राधा जी का सुख में सुखी, अगर राधा जी कृष्ण के पासा खेलते हुए अगर कृष्ण हार जाते हैं वो लोग खूब ताली बजाते हैं, अगर राधा रानी हार गए ना ये लोग दुखी हो जाते हैं, इसलिए राधा रानी का सुख में सुखी है राधा जी का दुख में दुखी है, इसलिए उनका भावना है हमारे राधा रानी श्याम सुंदर चिंता में क्यों विरहित होगी, इसलिए श्याम सुंदर राधा रानी का विरह में विरहित श्याम सुंदर भले बने हमारे प्रिया जी नहीं बनेगी, इसलिए हमारे जितने गोस्वामी हुए हैं जितने सारे ग्रंथ को दर्शन करो वो सबके साथ कभी अगर कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए अगर कृष्ण कभी आते हैं विभिन्न रूप में लेकिन कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है कभी राधा रानी कृष्ण को मनाने के लिए कभी गए हमारे गोस्वामी ग्रंथ में कहीं नहीं, हर प्रकार देखिएगा श्याम सुंदर ही राधा रानी को मनाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप में जाते हैं और मनाने के लिए पता नहीं 10 साल का प्रयास करते हैं, लाख जब राधा रानी नहीं मानती है श्याम सुंदर संपूर्ण साष्टांग प्रणाम करते हैं, जहाँ जिस जहाँ पर हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं स्मर गर्व खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदार, इसलिए उन्होंने एक रूपानुगत एक विशेष वैशिष्ट उन्होंने दिखाया, असल उन्होंने यह दिखाया उन्नत उज्ज्वल रस में उन्नत उज्ज्वल रस क्या है कहते राधा रानी का प्रेम रस है, इसलिए उन्होंने दिखाया जो तीन विग्रह है वो तीन विग्रह नहीं है वो तीन विग्रह केवल एक रस में उन्नत उज्ज्वल रस रसात्मक विग्रह है, जैसे श्री राधा रानी वो तो साक्षात उन्नत उज्ज्वल रस प्रतीक है, और श्री श्याम सुंदर, श्याम सुंदर क्या है? श्याम सुंदर जो हमारे जो साधारण ग्रह को स्थापन किया, क्यों कहते राधारण क्या चिंतन करते 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 और ब्रह्मा पुराण से उपटे समय को लेते हुए ये इमिल तला में ही कृष्णा राधारानी का चिंता करते 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 गौर रूप धारण किए थे। इसलिए श्याम सुंदर किसी रंग में वही उन्नत उज्ज्वल रस में विवाहित है। और स्वयं महाप्रभु राधा भाव इंद्र सुवलित नवमी कृष्ण स्वरूप जो कि तीन कारण को लेकर के कृष्ण स्वयं जगत में जो प्रकटित होते हैं। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी कहा कि बहु ये चीज पर साधारण चीज नहीं है, ये बहुत गंभीर गौड़ी वैष्णव का जो एकदम अत्यंत अत्यंत जो गंभीर वस्तुओं को उन्होंने तीन विग्रहों को स्थापन करके एक उन्नत उज्ज्वल रस की एक बहुत विचित्रता को स्थापन करते हैं। इसलिए उन्होंने अपना सन्यासी का नाम और समिति का नाम क्या रखा उन्होंने? सब वेदांत समिति, वेदांत वेदांत समिति। लेकिन आम व्यक्तियों को पता है वेदांत सूत्र जो वेदांत है ये मायावादियों का ग्रंथ है। इसलिए क्योंकि पहला जो उसके ऊपर भाष्य है ये शंकराचार्य का, शंकराचार्य भाष्य है, इसलिए आम व्यक्ति वही ग्रंथ पढ़ते हैं। बता रही ये वेदांत तो मायावादियों का ग्रंथ है या भक्ति प्रज्ञान कैसे बोलते क्या क्या उल्टा पुल्टा सब भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी जितना सब संन्यास करना और समिति का नाम भी भक्ति वेदांत वेदांत या सब रख दिया। यह चीज को हम देखो उनका जितने सारे वैशिष्ट्य वैशिष्ट है समझो सारा दुनिया को एक अलग वैशिष्ट्य उन्होंने दिखाया और वो वैशिष्ट्य को स्थापन भी किया है। इसलिए ग्रंथ को द्वारा प्रकाशित करते हैं। विशेषकर हमारे महाराज जी जो उनका जीवन जो लिखे हैं सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, नहीं तो हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव तिलक कंठी पहनने पर नहीं होता है। इसलिए मानव महाराज का जो संपूर्ण हृदय है और उनका गुरु जी का जो हृदय है, गुरु जी का हृदय शुद्ध सिद्ध शिष्यों के हृदय प्रतिफलित होता है। मानव अगर संपूर्ण रूप में हम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को समझना चाहते हैं कहते महाराज जो ग्रंथ को प्रकाशित किया वो ग्रंथ को सभी पढ़नी चाहिए। जितने हमारे संकाएं को उन्होंने बहुत गंभीर रूप में विवेचना करके उसको समाधान किया है। कहते इसका नाम वेदांत है। वेदांत का मतलब क्या होता है? महाराज जटा करते हैं वेद का जो अंतर है, कहते वेद का जो सार है, कहते वेद का सार क्या है? कहते निगम कल्प तरूर गलितम फल। कहते निगम जो वेद का, कहते उसका जो गलितम फल उसका जो प्रकोप फल है क्या चीज? कहते उसका प्रकोप फल श्रीमद भागवत है। हाँ, इसलिए सर्व वेदांत सार ही सार सार समुद्रितम और अर्थ एवं ब्रह्म सूत्र क्या है? कहते श्रीमद भागवत। कहते भागवत का सार क्या है? कहते भागवत का सार बताए कि दसम स्कंद तो भगवान का मुखार बिंद है। कहते उसमें हंसी क्या है? कहते उसमें जो हंसी है, कहते इसमें कहते कितने इसमें जो पांच तरह का जो पंचगीत है माने पंच प्राण है रासलीला को बताया उनको भगवान का जो हंसी है और उनका जो उसमें जो पांच जो गीत है जुगल गीत बैन गीत प्राणय गीत और गोपी गीत करके जो पांच गीत है वही हृदय है और वो गीत के द्वारा क्या स्थापन करते हैं उसमें संपूर्ण रूप में ब्रज गोपियों के हृदय की श्री किशोरी के हृदय के उद्गार है। अब उसी में विशेषकर उद्धव जी आकर के श्रीमद् भागवत में क्या स्थापन करते हैं? जब आशा महो चरण रेणु जुसा महो श्याम वृंदावन सुमति गुरुमल कौशिना वंदे नंद ब्रजश्रीना पाद रेणु अभिष्णस जहां पर वो सब श्लोक है क्या स्थिति को स्थापन करते हैं? कृष्ण उद्धव के द्वारा जगत में गोपी प्रेम के चरण का स्थापन करते हैं। इसलिए भागवत का सार क्या हो गया? भागवत का सार हो गया ब्रज गोपियों की प्रेम है उन्नत उज्जवल रस है जिस चीज को श्रीमद महाप्रभु उन्नत उज्जवल रसम सभक्ति प्रियम स्त्री को देने के लिए आए थे यही भागवत का सार है। अगर गौड़ीय वेदांत समित जब नाम लेते हैं वह भक्ति वेदांत जो नाम दिए ये नाम लेते ही वास्तव रूप में जो वेदांत का सार जानते हैं वेदांत क्या चीज जानते हैं तब इनका नाम लेने का साथ साथ उनको सामने एक उन्नत उज्ज्वल रस की ये लोग उपास है ये लोग और कोई चीज को उपास नहीं हाँ केवल उन्नत उज्ज्वल एक रस की उपासना कर रहे हैं ये चीज वहां पर विघोषित होता है। इसलिए उन्होंने एक संपूर्ण एक नई सिद्धांत को स्थापन करते हैं एक अलग अलग नई सिद्धांत है। इसलिए उनको विग्रह स्थापन और दूसरे उन्होंने कहते जो लुप्त तीर्थ होता आप लोग कभी भी श्रवण कर रहे थे मायापुर में कैसे महाप्रभु का स्थान को मैंने प्रभुपाद का जो मनोभिष्टम मनोभिष्टम अगर हम बोलते हैं श्री प्रभुपाद मनोभिष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं केशव कदा मध्यम दधा सुबदानी नहीं। इसलिए प्रभुपाद का जो मनोभिष्ट को ये भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ने विभिन्न रूप में उनके हृदय आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे कभी प्रभुपाद किसी ने कहा प्रभुपाद आप इतने मजबूत कर रहे हो इसको कौन देखेगा कभी ये तो विनोद है ना जगत का लोग जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। इसलिए वह चीज को उन्होंने स्थापित किया पुनः उन्होंने सेवा से गौरी मठ सर्वप्रथम स्थापन कर दी। इसलिए जो सेवा से गौरी मठ उन्होंने स्थापन किया कहां पर है वो स्थान क्या है राष्ट्र मंडल है रास मंडल है कहते मान लीजिए रास मंडल को उन्होंने प्रकाशित किया है। रास मंडल को प्रकाशित करते हुए उन्होंने जो मंदिर का एक जो रूप उन्होंने दिया है एक अद्भुत विचारधारा है उनका जो गेट का नाम उन्होंने रखा नरहरिकरण और उसमें परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन नरहरि कौन है कहते प्रभुपाद का जो अचल तत्व है मानो प्रभुपाद ये भक्ति परिषद गोस्वामी महाराज शिक्षा देते हैं अगर किसको भक्ति जगत में प्रवेश करना है गुरु भक्ति ही बोले जब तक गुरु जी का कृपा नहीं हो भक्ति जगत में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए उसका प्रवेश द्वार उन्होंने लिखा ये नरहरि स्वरण है भक्ति का प्रवेश का मार्ग है जो रूप गोस्वामी आदो गुरु पदार्थ भजन शिक्षा जी को प्रणाम देते हैं। लेकिन जो निकलेगा दूसरे गेट क्या नाम रखे कहते मदन मोहन स्वरण मदन मोहन गेट रखा है मतलब क्या है अगर सतमूल से कोई गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते गुरु जी का अगर चरण आश्रय ग्रहण करें विशेष करेंगे हमारे महाप्रभु धारा में लेकिन निकलेगा कहां पर निकलेगा श्री मदन मोहन चरण में। हाँ मदन मोहन क्या है पिता साम आवृत सौरी स्मय मान मुकाम भुज पिताम्बर भर सरगी साक्षात मनमद मनमद कैसे श्याम सुंदर गोपियों के बीच में गोपी गीत गाने पर श्याम सुंदर कैसे मन्मथ का मन्मथ रूप लेते हुए कैसे मदन मोहन प्रकट होते मतलब दीप को दिव्य राम लीला में प्रवेश होता है। अगर कोई अनुभव गोपियों को आश्रय ग्रहण करे उन्होंने जो सप्तक खंड का विवेचन दिया और विशेष करके मंदिर का जो विवेचन दिया एक अद्भुत विचारधारा है और उसको महाराज ने जो लिखा है अद्भुत समय हो गया है। इसलिए उनका तो आप लोग श्रवण कर रहे थे भक्त आनंद भक्ति और हरि भक्तों का कथा आनंद है। इसलिए अंश में शुरुआत ही किया था मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता था। इसलिए हाँ आज उनका तिरुमा महामहोत्सव है इसलिए हम लोग उनके चरण में प्रणाम करते हैं। हमने जैसे प्रभुपाद की मनोविष्ट को स्थापन किया जगत में जैसे भक्ति और भजन के आदर्श को दिखाया अगर उनका एक अगर जीवन में हम शिक्षा ले सकते हैं हमारा जीवन निश्चित रहेगा। हम उससे प्रार्थना करके कृपा करें जिसने कविता के उनका आदर्श मदद करके मदद करते
आप नारायण पर्यंत और स्वर्गीय गुरु पाद पद में महिमा श्रवण कर আমি দু একটি সংক্ষেপ মাত্র বর্ণন করছি। গুরু মহারাজ যখন প্রভুপাদ নিকটে আসলেন তখন তিনি গৌতম দাসবাদ মহারাজ তখন প্রকট ছিলেন তিনি নদীপ শহরেতে একটি পায়খানার ঘরেতে রাজা বন্ধ করে দিয়েছে একলা ভজন করছে জগতের লোক এসে তাকে নানা প্রকারে ব্যক্তি করতে পারে আমারও দূর হয়ে যায় আমার ছেলে বিবাহ হয়ে যায় মেয়ের বিবাহ হয়ে যায় আর সব এই জন্য মহা দুর্গন্ধের স্থান যে পায়খানা আর তখন নাদাতে পায়খানা থাকত খাটা পায়খানা তার মধ্যে তার মাজা বন্ধ করে দিয়ে আর গুরুত্বান করে নাম করছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিনটেন্ডেন্ট, নগরপালিকার যারা মরণ ছিল সব এসে বাবাজি মহারাজকে বলেছে, বাবাজি মহারাজ আপনি পাহাড়ে এসে আপনার জন্য সুন্দর কুটি মারা নির্মাণ করেন, আপনি ওখানে থাকবেন। বাবাজি মহারাজ দরজা খোলেন, আমি অত্যন্ত দুর্বল, আমি দরজা খুলতে পারছি, সকলকে বিদায় দিয়ে ইতিমধ্যে প্রভুপাদের আদেশ নিয়ে গুরু মহারাজ তখন বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী ষোলো সতেরো বছরের বয়স, সরোজ পিসি মা আর একজন মেরি মহারাজ তখন ছিলেন, তখন নাম তার অন্য ছিল। এই দু তিনজন লোকের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে দর্শন, যখন গেলেন তখন বললেন যে বাবাজি মহারাজ আমরা দর্শন করতে, আমি নড়তে পারছি, ও আমরা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অনুগ্রহী, তিনি আদেশ দিয়েছেন দর্শন দর্শন করতে, আমরা ও সরস্বতী ঠাকুর পাঠিয়েছে। দরজার খুলে নিয়ে বললেন, তোমার যাবতীয় বিপত্তি আমি সব মাথায় গ্রহণ করলাম, তুমি নির্ভীক ভাবে সত্যের প্রচার কর, যত বিপত্তি আপত্তি আসবে আমি সব গুরু মহারাজ সত্যম পূজা প্রিয়ম পূর্বা, এটা হচ্ছে শাস্ত্রের কথা, সত্য বলা কিন্তু প্রিয় সত্য, মা পূজা যদি অপ্রিয় যদি প্রিয় না তাহলে করবে। আর গুরু মহারাজ কি ছিল, সত্যম পূজা অপ্রিয় সত্য, অপ্রিয় হলে নেই সত্য, এই জন্য গুরু মহারাজের ভিক করে থেকে সহিয়া সখী একটি মা প্রাণ এইসব গুলিকে একেবারে খণ্ড বিখণ্ড করে, তারপরে বহু বিপত্তি এসেছে চুচুড়াতে অন্যান্য সব জায়গায়, কিন্তু গুরু মহারাজ কি করেছে ভিক ভাবে তখন তাঁকে কিছু কৌতুক তার দলের মহারাজ আমার এই শক্তি করে তার আশীর্বাদেতে শেষ পর্যন্ত তিনি বলতেন যে তারই কৃপাতে আমি বিশ্বাসী নির্ভীক ভাবতে প্রভুপাদের বাণী কোন সময়ে প্রভুপাদের নিকটে একটা পত্র আসল, তার পত্র তার মায়ের, আমি খুব অসুস্থ অন্তিম সময়, আপনি বিরোধী হারিকে পার্টি পুজো পাবো তাকে দর্শন করে আমি প্রভুপাদ বললেন, বিনোদ তোমার মা অসুস্থ যাও বাড়িতে গিয়ে তাকে দর্শন করে, তারপরে গুরু মহারাজ ওখান থেকে চলে আসেন আর এসে কোথাও ঘরে পৌঁছে আমরা কারণে আর হরিনাম করবেন জান নাই, তারপরে জিজ্ঞাসা তুমি বিরোধ দিয়েছে বাড়িতে, তো কোন ভক্তকে জিজ্ঞাসা তিনি বলছেন না কিন্তু সেই আছে ঘরে দেখেনি, দেখে নিয়ে আসলেন প্রভুপাদ খালি তোমাকে বললাম তোমার মা তোমাকে দেখেছে তুমি যাও তুমি গেলে না, তিনি বলেছে প্রভুপাদ কোটি কোটি জন্মের পরে আমি আপনার বিপদে আর সে সময় যদি মায়ের কাছে যাব আর মা যদি বলে বাবা আমি তো যাচ্ছি ঘর বৃহস্পতি তুমি দেখছি, তখন তার কথা আমি কিরকম করতে পারব, এই জন্য এই চিন্তা করে আর এই সুযোগ হবে না যে আপনার পাপ বর্ণ থেকে ভক্তি দান করে জগৎ থেকে আমি কৃষ্ণ প্রেম পাব আর তো সম্ভব হবে এইগুলো একটা প্রভুপাদ বলেন। এইরকম ভাবে একবার মথুরাতে কেশবজি গৌরী মঠে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, পূজ্যপাদ গজাওয়াল মহারাজ, পূজ্যপাদ ঋষিকেশ মহারাজ, আর মাধব মহারাজ, পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ সব মহারাজরা একত্রিত হয়েছিলেন এই কার্তিক মাসে গুরু মায়ের সকল কেশবজি গৌরী মঠে। তারা সকলেই একত্রিত হয়ে কথাবার্তা বলছেন। ইতিমধ্যে ঋষিকেশ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, মহারাজ আমার একটি প্রশ্ন আছে, আপনার সকলেই আছেন উত্তর দিন। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, জীবের নিত্য কৃষ্ণ দাস এর পরিবর্তন হয় কিনা সাধুর সঙ্গে? সাধুর সঙ্গে সেটা পরিবর্তন হতে পারে কিনা এই প্রশ্ন করে তিনি বললেন যে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, তখন শ্রীধর মহারাজ পূজ্যপাদ বললেন যে কেশব মহারাজ তুমি বলছো যে তোমার কি বিচার? তখন তিনি বললেন জীবে কৃষ্ণের নিত্য স্বরূপ, ওই যার স্বরূপ আছে সে কি পরিবর্তন হতে পারে না? যা আছে সে কি জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস, পাঁচ রসের মধ্যে কোন একটি জীবের স্বরূপের মধ্যে আছে সেটি আর হয় না। যেরকম হবে আমের গুটলি, নিমের গুটলি আর কাঁঠালে সব বীজ এক জায়গাতে গঙ্গা ধারে ওই শেষ জমিনের উপরে পাশে পাশে দাঁড়িয়ে এই গঙ্গা জল দিয়ে সিঞ্চন করা, এটি সূর্য তার উপরে দেওয়া হওয়া এই সব কিছু, কিন্তু অলগ অলগ বৃক্ষ হয় না এই বৃক্ষ যার মধ্যে যা পোটেন্সি আছে ওই চিন্তা পরিবর্তিত হবে যাহা রাধা দাস ভাব আছে স্বরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়তে একটা স্বরূপ আছে, স্বরূপে না রূপ কৃষ্ণ সেবা ইত্যাদি তাহার মধ্যে পটেন্সি তার মধ্যে সকলের মধ্যে তার মধ্যে দিকে যাহা যা আছে সাধু সঙ্গে হরি কথা শ্রবণ করতে করতে গুরু কৃপাতে ধীরে ধীরে যাহার যা ভাব আছে কারো হয়তো দাস্য ভাব আছে দাস্য ভাবার প্রকাশিত করো কিন্তু তাহার পোটেন্সি আছে কোথা রাধা দাস্য পর্যন্ত আগে যেরকম হবে গোপকুমার, গোপকুমার সব জায়গাতে যাচ্ছে কোথাও সন্তুষ্টি হচ্ছে না, যখন সেটি গোলক বৃন্দাবনেতে কৃষ্ণের সক্ষ ভাবেতে আসলো তার মনোকামনা পূর্ণ ওর দিকে আগে শুনলো মা যশোদার বাবা।